ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत साइप्रस भागीदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन में दृढ़ता से निहित है। निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता परिस्थितियों या सीमाओं से बंधी न होकर समय की कसौटी पर खरी उतरी है।
अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए साइप्रस के निरंतर समर्थन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया और यूरोप के संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की।
पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है।
दोनों पक्ष क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के महत्व पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साइप्रस के समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने आतंकवाद, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी की समस्या का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों के बीच एक वास्तविक समय सूचना विनिमय तंत्र विकसित करने की घोषणा की। इससे पहले साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस गणराज्य के उच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया। इस बीच प्रधानमंत्री साइप्रस की सफल यात्रा के बाद आज शाम कनाडा के लिए रवाना हो गए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। गृह सचिव गोविंद मोहन ने बैठक की अध्यक्षता की। समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो अलग से इस मामले की जांच कर रहा है। इस बीच गुजरात में दुर्घटना के 99 मृतकों के DNA नमूनों का अब तक मिलान हो चुका है। इनमें से 64 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मिलान की प्रक्रिया 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। दुर्घटना में मारे गए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज शाम पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजकोट में किया जाएगा। सरकार ने जनगणना कराने की अधिसूचना आज जारी कर दी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत आपदा प्रबंधन क्षेत्र में वैश्विक प्रमुख बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री शाह ने कहा कि भारत ने पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि सटीक पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी के माध्यम से राहत और बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के राज्य में फिर से जाति जनगणना कराने के फैसले की आलोचना की है। नई दिल्ली में वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग महज वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र की एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 4 महिलाओं की मौत हो गई और 6 से अधिक अन्य घायल हो गए। घटना के कारणों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की गई है। ईरान इसराइल के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच परमाणु अप्रसार संधि से हटने की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान की संसद ने परमाणु संधि से बाहर निकलने के लिए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 678 अंक बढ़कर 81,796 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 228 अंक चढ़कर 24,947 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।